सत्यवचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने लुका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के कुछ पदों को पूरा नहीं किया था समय के अभाव के कारण, लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और 63 पद से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इसके साथ ही साथ हम अध्याय 23 में प्रवेश करेंगे। लेकिन इसके पूर्व कि हम अध्ययन करें, आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और जीत पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय पिता परमेश्वर, जब हम दूर दराज में बैठकर आपके वचन एक साथ सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को और हमारे एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि जब हम आपके जीवित वचन को सुने तो हम समझ सकें और न केवल समझें लेकिन अपने जीवन में उसे लागू कर सकें। उसके अनुसार चलने के लिए आप हम सब की सहायता करें। हमारी प्रार्थना है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, दुखी और निराश हैं, प्रभु आप उनसे भी आज के वचन के द्वारा बातचीत करें ताकि वे भी आप पर भरोसा कर सकें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम सबसे पहले देखेंगे यीशु का अपमान एवं ताड़ना। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 63 से 65 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठड्डों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढाप कर उससे पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा, और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने यीशु को बंदी तो बना लिया था परंतु उनके पास उन पर दोष लगाने के लिए कोई भी आरोप नहीं था, अतः उन्होंने महासभा का अवैधानिक सत्र बैठाया कि उस पर दोष पत्र अर्थात आरोप लगाया जाए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने उसे अभी पकड़ने की योजना नहीं बनाई थी, परंतु यहूदा ने संभवतः उनसे कहा कि वे उसे तत्काल ही बंदी बना ले, अन्यथा वह शहर छोड़कर चला जाएगा। धर्म गुरुओं ने उसे मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करने के आरोप में बंदी बनाया था, जबकि व्यवस्था का उल्लंघन वे स्वयं कर रहे थे, क्योंकि रात के महासभा में बैठक वर्जित थी और निर्णय लेना अवैधानिक था। एक और बात, महायाजक ने अपना वस्त्र फाड़ा जो व्यवस्था में वर्जित था अर्थात मना था। उन्होंने आरोप पत्र तैयार करने तक यीशु को सैनिकों के हाथ में सौंप दिया। मृत्यु दंड के अपराधी के साथ सैनिक एक खेल खेलते थे जिसमें वे अपराधी की आंखों पर पट्टी बांध देते थे और उसके मुंह पर बारी बारी से थप्पड़ मारते थे। तब वे उसकी आंखों से पट्टी हटाकर पूछते थे कि किस सैनिक ने उसे नहीं मारा, वह पहचाने। यह खेल चलता रहता था जब तक कि अपराधी का चेहरा पूरा बिगड़ ना जाए। यही यशाया नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है कि उसका चेहरा पहचाना नहीं जाता था कि वह मनुष्य है। प्रभु की आकृति अति भयंकर दिखाई देती थी, संभवतः इसी कारण वह क्रूस उठाने में दुर्बल हो गया था। अब हम आगे देखते हैं महासभा के सामने यीशु। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 66 पद से 69 पद में हम पढ़ते हैं, जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीति न करोगे और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। मित्रों, महासभा ने यीशु से दो प्रश्न पूछे। पहला, क्या तू मसीह है? यदि यीशु हाँ कहता तो रोम का विद्रोही माना जाता जो जानलेवा था। भजन संहिता 110 उसके 1 पद में पिता परमेश्वर अपने पुत्र से कहता है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम लूका 22 उसके 70 पद में पढ़ते हैं, इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूं। यह उनका दूसरा आरोप था। हम लूका 22 उसके 71 पद में पढ़ते हैं जो इस अध्याय का अंतिम पद है, तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। मित्रों, उन्होंने यीशु पर यह आरोप लगाया परंतु जब वे रोमी न्यायालय में खड़े हुए तब उन्होंने आरोप बदल दिया। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 23 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे यीशु पिलातुस के समक्ष। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिलातुस रोम की ओर से नियुक्त उनका राज्यपाल था फसा के समय वह यरूशलेम में आया हुआ था और वहां रहता था कि यहूदियों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दे। मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन रोमियों के न्याय का विषय नहीं होता था, अतः उन्होंने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जो सरासर झूठ था। हम लूका 23 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि एक कष्टकार साधारण वस्त्रों में खड़ा है और पिलातुस उसे पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तेरे कहने के अनुसार हूं। पिलातुस को इसमें न्यायिक विषय दिखाई नहीं दिया, अतः वह उसे छोड़ देना चाहता था। तब हम आगे पढ़ते हैं लूका 23 उसके 4 पद में, तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस ने कहा कि यीशु पर कोई दोष सिद्ध नहीं होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं लूका 23 उसके 5 पद में, पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को उसकाता है। अतः उन्होंने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। अब हम आगे देखते हैं हेरोदेश के समक्ष यीशु और बरब्बा की रिहाई। लुकार्चि सुसमाचार 23 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेश की रियासत का है, उसे हेरोदेश के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। मित्रों, गलील क्षेत्र हेरोदेश के न्याय क्षेत्र में था, अतः पिलातुस को बहाना मिल गया कि इस झंझट से बच जाए। अब क्योंकि हेरोदेश भी वहीं पर था, अतः पिलातुस ने यीशु को हेरोदेश के पास भेज दिया। देखिए परमेश्वर की योजना एक एक चरण कैसे व्यवस्थित है। अतः मेरा मानना है कि हेरोदेश का वहां उपस्थित होना संयोगवश नहीं था। हम लूका 23 उसके 8 पद में पढ़ते हैं, हेरोदेश यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। कुछ समय पहले ही यीशु ने फरीसियों से कहा था, जिसे हम लूका 13 अध्याय उसके 32 पद में देखते हैं, जाकर उस लोमड़ी अर्थात हेरोदेश से कह दो। अतः हेरोदेश यीशु से भेंट करने के लिए उत्सुक था। लूका 23 उसके 9 में लिखा हुआ है, वह उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। ध्यान दीजिए कि यीशु चुप रहा, क्योंकि हेरोदेश अनंत विनाश के मार्ग पर इतना अधिक आगे निकल गया था कि अब उसका लौटना असंभव था। प्रभु ने उसे संदेश देने का प्रयास नहीं किया। हम लूका 23 उसके 10 से 12 पद में पढ़ते हैं, और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठड्डों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेश मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के वैरी थे। यहां देखिए, धर्मगुरु भरसक प्रयास में लगे हुए थे कि यीशु को दोषी ठहराए, परंतु हेरोदेश भी उसमें कोई दोष नहीं देखता है। अतः उसने उसका तमाशा बनाने के लिए अपना पुराना राजसी वस्त्र उसे पहनाया और उसके साथ मनोरंजन किया और उसे पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस और हेरोदेश में मित्रता नहीं थी, पहले वे एक दूसरे के शत्रु थे, परंतु अब क्योंकि दोनों यीशु के विरोध थे, अतः उनमें संधि हो गई। यह सांप्रदायिक एकता का आरंभ है। हम लूका 23 उसके 13 से 15 पद में पढ़ते हैं, पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, न हेरोदेश ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। ध्यान दें, न तो हेरोदेश और न ही पिलातुस यीशु में कोई दोष पाते हैं। यहूदियों के धर्मगुरु द्वारा लगाए गए आरोप न्यायिक विषय नहीं थे, अतः उन पर विचार करना उन्हें उचित नहीं समझ पड़ा। हम लूका 23 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। यीशु को कोड़े लगवा कर छोड़ देना समझौता करना था। यदि वह दोषी था तो उसे दंड दो, और यदि वह निर्दोष है तो उसे छोड़ दो। किसी ने कहा है कि समझौता शब्द भाषा का अनैतिक उपयोग है। लुकार्ची सुसमाचार 23 अध्याय उसके 17 से 26 पद में हम पढ़ते हैं, तब सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। यही किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई भी बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। सो पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। मित्रों, पिलातुस यीशु के बारे में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहता था। यदि हम ध्यान से देखें तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। यीशु बचना नहीं चाहता था, पिलातुस बचाना चाहता था। पिलातुस इन धर्म के राजनीति खेलने वालों से बचना चाहता था। उसने चाल चली कि बरब्बा और यीशु में से एक का चयन जनता के ऊपर छोड़ दे। वह जानता था कि धर्मगुरु यीशु से वैतिक बैर निभा रहे थे, परंतु वह आंकने में असफल रहा कि धर्म विकृत हो जाए तो कितना नीचे गिर सकता है। मती लिखता है कि महायाजक और अगो ने आम जनता को प्रेरित किया कि वे बरब्बा की रिहाई की मांग करें। पिलातुस को अचंभा हुआ कि यीशु के चारों ओर भीड़ लाने वाला जनसमूह बरब्बा की रिहाई की मांग कर रहा है। यह बड़ी विचित्र बात है कि एक न्यायाधीश जनता की राय पूछ रहा है कि अपराधी के साथ क्या किया जाए। वह जानता था कि यीशु निर्दोष है, फिर भी उसने उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग स्वीकार की। वाह रे रोम का न्याय, क्या ही धन्य है। मित्रों, हर एक मनुष्य के समान पिलातुस को भी यीशु के बारे में निर्णय लेना था। आपका निर्णय क्या है? हम आगे देखते हैं यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी और वैरियों के लिए यीशु की प्रार्थना। लुकार्ची सुसमाचार 23 अध्याय उसके 27 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और बिलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ को न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। यीशु क्रूस उठाकर जा रहा था और स्त्रियां उसके लिए विलाप कर रही थी। उसने उन्हें रोने के लिए मना किया। वह हमारी सहानुभूति नहीं विश्वास चाहता है। वह हमसे सहानुभूति पाने के लिए नहीं मरा, परंतु वह उनसे कहा कि अपने लिए और अपनी संतान के लिए विलाप करें, क्योंकि महाक्लेश का संताप असहनीय होगा। हम देखते हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। लुकार्ची सुसमाचार 23 अध्याय उसके 33 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। यीशु के साथ दो अपराधी भी क्रूस पर चढ़ाए गए। हम लुका 23 उसके 34 पद में आगे पढ़ते हैं, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने उनकी क्षमा की प्रार्थना की, अन्यथा वे अक्षम्य पाप के दोषी थे परमेश्वर पुत्र की हत्या के रूप में। आगे देखते हैं यीशु की निंदा। लुका 23 अध्याय उसके 35 पद में हम पढ़ते हैं, लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठड्ढा करके कहते थे, कि इसने औरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। यीशु क्रूस से उतर सकता था, परंतु ऐसा करने में वह मसीह की भूमिका नहीं निभा पाता और यशाया 53 की भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती, जहां पर लिखा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों पर से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मित्रों, यीशु के क्रूस पर लटके रहने के कारण हम पाप से मुक्त किए गए हैं। हम लूका 23 उसके 36 से 38 पद में आगे पढ़ते हैं, सिपाही भी पास आकर सिरका देकर उसका ठड्डा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था कि यह यहूदियों का राजा है। यीशु के क्रूस पर उन्होंने यूनानी, इब्रानी और लतीनी भाषा में दोष पत्र लगाया था। यूनानी भाषा बुद्धि, शिक्षा, साहित्य और विज्ञान की भाषा थी। लतीनी भाषा कानून, व्यवस्था और सेना और सरकार की भाषा थी। इब्रानी अर्थात हिब्रू धर्म संबंधित कार्यकलापों की भाषा थी। यीशु जब अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब वह जगत का राजनीतिक, शैक्षिक तथा आत्मिक शासक होगा। उनका दोष पत्र वास्तव में भावी सत्यता का प्रतीक था। इस दोष पत्र को पूरा समझने के लिए हमें चारों सुसमाचारों को एक साथ देखना होगा। एक अपराधी यीशु की निंदा करता है, दूसरा अपराधी यीशु से निवेदन करता है। आइए हम इसे आगे देखें। लूका 23 उसके 39 से 41 पद में हम पढ़ते हैं, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहां पर ध्यान दीजिए, मत्ती और मरकुस के अनुसार आरंभ में तो दोनों अपराधी यीशु का उपहास कर रहे थे, परंतु अंतिम 3 घंटे के समय एक ने देखा कि घटनाएं असामान्य रूप से ले रही हैं, अर्थात कुछ विचित्र बात है। पहले तो यह व्यक्ति बरब्बा के स्थान पर क्रूस पर था और फिर यह निर्दोष भी है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह इसके लिए मर रहा है। वह समझ गया कि यह मनुष्य और परमेश्वर के बीच की अलौकिक घटना है। वह वास्तव में परमेश्वर है। उसे विश्वास हो गया और वह उसके पास आ भी गया। हम लूका 23 उसके 42 से 43 पद में आगे पढ़ते हैं, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मित्रों, उसी दिन यह अपराधी, जिसे रोमी न्याय के अनुसार जीने का अधिकार नहीं था, यीशु के पास चला गया। यह व्यक्ति एक अपराधी था, परंतु परमेश्वर पुत्र में विश्वास लाने के कारण उसका उद्धार हो गया। उसे विश्वास हो गया था कि प्रभु यीशु का राज्य आएगा जो उसकी मृत्यु के बाद होगा। यीशु ने उससे कहा कि वह उसी समय उसके साथ स्वर्गलोक में होगा। ये दो अपराधी एक ही अपराध का दंड पा रहे थे। उनमें क्या अंतर था? सिर्फ यीशु में विश्वास लाने का, जो एक ने किया और दूसरे ने नहीं किया। एक बार मैं अपने मित्र के साथ था। मैंने उससे पूछा कि वह क्रूस पर लटके उस अपराधी के बारे में क्या सोचता है। यह मित्र स्वतंत्र विचारों का था। मैंने उससे पूछा, क्या आप उसे दया के लिए भेजेंगे? क्या आप उसे दया प्रदर्शन के काम करने को कहेंगे? वह मुझे आश्चर्य से देखने लगा। मैंने कहा, आप अपने लोगों से यही तो कहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा, परंतु यह बेचारा क्या करेगा? इसके तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। और क्या आप उसे किसी कलीसिया की सदस्यता लेने की राय देंगे कि उसे कौन कौन से धार्मिक कार्य करने होंगे? मित्रों, ध्यान दें, प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह उसका विश्वास था कि वह स्वर्ग लोक में प्रवेश कर पाया। क्या आज आपका विश्वास भी स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के जैसा है या नहीं? मित्रों, आज संसार में लोग मोक्ष अर्थात उद्धार पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है जो हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार कर रहा है, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह उसे उद्धार देगा। जैसे कि हम क्रूस पर लटके अपराधी को देखते हैं जिसने यीशु पर विश्वास किया कि वही उद्धार करता है और उसको स्वर्ग में जगह दे सकता है, और यीशु ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु इस जगत में हम पापियों को बचाने के लिए ही आए थे। चाहे आप कितने बड़े पापी या अपराधी क्यों ना हो, यीशु पर विश्वास करें और उसके पास आएं, अपने अपराधों को स्वीकार कर लें और निश्चय जान लें कि प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वह पापियों से प्रेम करते हैं। क्या आप वास्तव में उद्धार पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही यीशु को अपना जीवन दे दें। आइए हम प्रभु के निकटता में आएं और अपने आप को जांचें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम पापी हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, फिर भी आप हमारी चिंता करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन के उन पापों को स्मरण कर रहे हैं। प्रभु जी, आप उन्हें भी क्षमा करें। जिस प्रकार से आपने उस क्रूस पर टंगे हुए अपराधी को क्षमा किया और वह आपके राज में प्रवेश कर पाया, आज हम में से कई लोग इसी स्थिति में हैं। आप हमें क्षमा करें ताकि हम भी उस उद्धार का आनंद को प्राप्त कर आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के जीवित वचन के लिए जिसके माध्यम से आपने हमें मौका दिया कि हम अपने जीवन का निर्णय ले सकें। हम आपको आदरमान सम्मान देते हैं सारी बातों के लिए, और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Hallelujah!